Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adiguru, Bhagwan शंकराचार्य जी महाराज विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ् निर्विकल्पम् पुनर् माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम् मायावीव विजृंबयत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्सवस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशम्बादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करुणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागप्स्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिति अत्यन्तः स्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना वेदत स्वप्ने जागृति वायये सपुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये भूरं वाञ्छनलोन्मरमहर् नाथो इमां सुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमोऽस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। ओम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में चौथा श्लोक। नाना छिद्रघटोदर स्थित दीप प्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभातीतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। शंकराचार्य जी कहते हैं ये आत्मा ही सभी को प्रकाशित करने वाला है। आत्मा के प्रकाश से ही सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। एक सामान्य नियम वेदांत की जो प्रक्रिया है उस पर संकेत करते हैं। हम जब भी ये कहते हैं कि मैं इस पदार्थ को जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पदार्थ को आप जानते हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान शिव ही इस पदार्थ को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि मैं से अभिन्न वो परमात्मा और परमात्मा से अभिन्न मैं। जीवात्मा इस अभिन्नता को नहीं जानता है, इसीलिए परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं ये मानता है, और इसीलिए जीवात्मा ये मानता है कि जगत के पदार्थों को देखने वाला जानने वाला मैं हूं। इस वाक्य में उसका अहंकार ही काम करता है, अभिमान ही काम करता है, इस वाक्य में उसकी ना समझ ही काम कर रही है। वेदांत जब आप कहते हैं या मैं कहता हूं या परमात्मा कहते हैं, वो पर्यायवाची है, समानार्थक है, एकार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। परमात्मा इस जगत के पदार्थों को कैसे जानता है या मैं इस जगत के पदार्थों को कैसे जानता हूं, परमात्मा को समझ में आवेगा तब फिर मैं अपने बारे में समझ पाऊंगा, और मैं अपने बारे में ठीक से समझूंगा तो फिर परमात्मा के बारे में भी समझ में आ जाएगा। और हम लोग यही कमजोरी कर जाते हैं कि न मैं अपने बारे में ठीक से समझ पाता हूं न परमात्मा के बारे में ठीक से समझ पाते हैं। किसी बहन ने कहा था कल कि अड़चन क्या है, सब कुछ समझते हुए भी अड़चन कहां है, समस्या कहां है, अपरोक्ष क्यों नहीं होता है। तो उसका उत्तर यही था, समझते हैं समझ अनुसार करते नहीं है, इसीलिए अड़चन है। अध्यास को हटाने के लिए सत्संग करते हैं, अध्यास को हटाने के लिए समझदारी बढ़ाना चाहते हैं, और सत्संग और समझदारी स्वाध्याय का मुख्य प्रयोजन ही है कि अध्यास को हटाया जाए। अध्यास क्या है ये भी हम समझते हैं कि अध्यास कैसे बनता है, और ये अध्यास कैसे छूटता है ये भी जानते हैं। ना समझदारी से अध्यास होता है और समझदारी से अध्यास की निवृत्ति होती है, ये भी जानते हैं, और जानते हुए अध्यास को बचाने की कोशिश करते हैं, रक्षा करते हैं अध्यास को। हम ही उस अध्यास की रक्षा करते हैं, बचाना चाहते हैं। सो कैसे महाराज, कल शाम को भी ये चर्चा चल रही थी। यह अध्यास को हटाने के लिए जो हटाने के लिए कर्म करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। सबसे बड़ी अध्यास यह है, हमने संकेत किया है, केवल आपकी बात नहीं कह रहा हूं, यह हमारे साथ भी यही समस्या है, है? केवल आपकी बात नहीं कह रहे, अध्यास को समझ भी रहे हैं, अध्यास ही सारे अनर्थ का कारण है ये बात भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, और सारे वेदांत का और सत्संग का प्रयोजन इसी अध्यास को हटाना है ये भी हम समझ रहे हैं। आप समझो नहीं समझो, हम तो समझ रहे हैं कम से कम, फिर भी हम ही खुद इस अध्यास को बचाए रखे हैं, क्योंकि इस अन्नमय कोष आत्मानंद गिरी मैं हूं, ये मेरा अध्यास है कि नहीं? मेरा अध्यास क्या है? ये अन्नमय कोष, पंचभूतात्मक अन्नमय कोष शरीर, यही मैं हूं, ये मेरा अपना अध्यास है, और मैं समझदारी होने पर भी इस अध्यास को स्वयं रक्षा करता फिर रहा हूं, मैं ही बचाता फिर रहा हूं। क्यों? थोड़े से कपड़े में यदि गंदा हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे, ये चिंता मुझे पहले सताने लगती है, और ठीक से मत्थे में विभूति नहीं लगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, आज स्वामी जी ने विभूति त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया, ये चिंता सताने लगती है। तो रोज लगाते थे त्रिपुंड, आज त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया, लोग क्या कहेंगे। अब त्रिपुंड कोई मेरे से कोई संबंध थोड़ी है, त्रिपुंड का संबंध स्थूल शरीर अन्नमय कोष से है, और उस अन्नमय कोष में लगा हुआ जो त्रिपुंड है, मैं मानता हूं कि मुझे लगा हुआ है, मैं लगा रहा हूं, और एक दिन न लगे तो लोग क्या कहेंगे, ये देख लो। और एक दिन ठीक से लगा कपड़ा यदि ठीक से नहीं लगाया तो लोग क्या कहेंगे, भाई कपड़े भी ठीक से पहनना होगा, सुबह उठते ही डर लगता है, डर इस बात की कि कोई नंगा ना देख ले, है? मैं ही बचा रहा हूं अध्यास को, शरीर की अध्यास, कपड़ों की अध्यास, इनके साथ मैं को अपने संबंध जोड़ रहा हूं, और यदि ठीक से बटन यदि नीचे ऊपर हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कपड़ों की अध्यास ऐसी है कि शरीर के अध्यास तो परे की बात छोड़ दो, हम तो इतनी दूर कपड़ों के अध्यास पर ही मरे जा रहे हैं, इसी की रक्षा करने लग रहे हैं। रोज साफ धुले हुए कपड़े होने चाहिए, यदि एक दिन थोड़ा गंदा कपड़ा हो गया, एक दिन धोने के लिए समय नहीं मिला या कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, एक दिन प्रेस नहीं हुआ कपड़े में तो लोग क्या कहेंगे। अध्यास, और इन्हीं अध्यासों की हम व्यवहारिक सत्ता में सारा समय प्रयत्न इन्हीं अध्यास की रक्षा करने में लगा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है कि अरे कपड़ा गंदा हो गया तो होने दो, इस कपड़े से मेरा क्या संबंध है, अरे भाई कपड़े के बटन नीचे ऊपर हो गया तो होने दो, उससे मेरा क्या संबंध है, अरे शरीर में कपड़ा नहीं है तो नहीं होने दो, कपड़ा सब निकलता है तो निकल जाने दो, नंगा होता है तो कपड़ा, शरीर नंगा होता है, मैं थोड़ी नंगा होता हूं, हिम्मत नहीं हो रहा है। हो रहा है हिम्मत, हो सकता है आपकी हिम्मत होगी, नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, मीरा ने हिम्मत किया, मारा झटका, निकल गई, अध्यास टूट गया, खानदान की बहू हूं, हमारा तो यह अध्यास है और वही अध्यास हमें बांधे रखती है। समझते हुए कि इस अध्यास से निकलना है, समझते हुए भी यही अध्यास बंधन का कारण है, यही अध्यास दुख का कारण है, यही अध्यास विक्षेप और अशांति का कारण है, ये जानते हुए भी हिम्मत नहीं करते हैं और मेरा हिम्मत कर गई है। खानदान की बहू होने से क्या होता है, मुझे इससे क्या, यही तो मेरे बंधन का कारण है। मार गई लात और निकल गई, हिम्मत कर गई वो। लोग कहे मेरा भैरी बावरी, लोगों ने तो कहा है, मीरा ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मीरा ने ये नहीं सोचा है। तो अध्यास टूटा, खानदान के एक अध्यास जो था वो टूट गया, देह का जो अध्यास था वो टूट गया। हमारा तो ये अध्यास है कि ठीक समय पर यदि दवा न खाएं, एक दिन यदि दवाई की डोज छूट गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, है? क्या होगा, आकाश तो गिरेगा नहीं, गिरेगा। तुम यदि एक टाइम एक समय दवा की डोज न खाए तो आकाश गिर पड़ेगा, आकाश तो तुम मर जाओगे तो भी नहीं गिरेगा। आकाश तो ऐसा चीज है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये सारी आकाश को हम ही संभाल रहे हैं, क्योंकि हम दवाई खा रहे हैं और जी रहे हैं और आकाश को हम ही धान रहे हैं, संभाल रहे हैं, और यदि हम मर गए तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ खत्म, तुम्हारा अध्यास खत्म होगा, तुम्हारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। और क्या खत्म होगा भाई, तो घर से निकल नहीं पाते, निकलेंगे तो कहां जाएंगे, एक दिन भोजन नहीं छोड़ सकते, भोजन छोड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो अध्यास हम बचाए रख रहे हैं, इसी की रक्षा करते हैं, जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं और जो जान रहे हैं कि जो हमें दुख दे रहा है, सत्संग के माध्यम से जान भी गए हैं कि यही हमें दुख दे रहा है, और सत्संग के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इससे संबंध विच्छेद करना ही तुम्हारे शांति का कारण है, सुख और शांति का हेतु है, सत्संग से भी सिद्ध हो गया, युक्ति से भी सिद्ध हो गया है। जब भी इससे हमने संबंध तोड़ा है, चाहे प्राकृतिक ही सही, हम बड़े सुखी बड़े आनंदित हुए हैं। जागृत की संबंध हमने छोड़ दी है तो हम बड़े जागृत की समस्या से हम मुक्त हो चुके हैं। स्वप्न के संबंध छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य छोड़ दिया है तो बहुत झंझटों से हम मुक्त हो गए। जागृत प्रपंच का स्वप्न में कोई मतलब नहीं है, स्वप्न प्रपंच का सुषुप्ति में कोई मतलब नहीं है। सुषुप्ति में आप स्वप्न और जागृत प्रपंच दोनों से मुक्त हो गए, क्या आनंद, सुखम अहम अस्वाप्सम, जागते ही बड़े गर्व से सबको सुनते हुए घोषणा करते हैं कि आज क्या आनंद में सोया। कैसे सोए तुम आनंद में, उसका कारण क्या है, क्योंकि शरीर के साथ, देह गेह के साथ, शरीर के साथ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन इंद्रिय आदि विषयों आदियों से संबंध का विच्छेद हो जाना ही वह तुम्हें सुख से सोने का कारण बन गया है। लेकिन वहां से दुर्भाग्य की बात है कि निकलने का कारण लेकर गए थे, वही तुम्हें फिर जगा देती है। अविद्या को निवृत्त करके नहीं गए थे, इसलिए उस अविद्या के चलते फिर जगना पड़ता है, फिर जगते हैं, फिर सारे पदार्थों से तादात्म अध्यास हो जाता है, फिर वही सारे समस्याओं से जूझते रहते हैं। और जब प्राकृत ही सही ये संबंध टूट जाता है तो बड़ा आनंद आता है। तो वेदांत का ये कहना है, ये तो प्रकृति ने व्यवस्था मिला दी है तुम्हें ये अभ्यास करने के लिए कि जिसके साथ तुम तादात्म्य जोड़ रहे हो उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, ये समझाने के लिए प्रकृति ने ये व्यवस्था मिलाई है कि कभी जागृत में आ जाओ, कभी तुम सुसुप्ति में चले जाओ, ये संभव है ये बताने के लिए। लेकिन ये जो प्रकृति के द्वारा हुआ है ये संबंध विच्छेद, वह प्राकृत हुआ है, तुम अपने विचार से ये विच्छेद कर पाओ तो फिर दोबारा ये समस्या तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तो हम हिम्मत नहीं कर पाते, रात को सोते समय भी सो तो जाते हैं और डरते हुए सोते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सुबह सोते ही रह जाएं, और 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम ना पहुंचे तो ले जी यही तो अध्यास है, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, क्या आकाश गिर जाएगा जिस दिन नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे तो नहीं पहुंच गए, आकाश के गिर जाएगा। बोले नहीं महाराज, सत्संग छूट जाएगा। अरे छूट जाएगा तो छूट जाएगा, क्या बिगड़ेगा तुम्हारे स्वरूप में है? तुम्हारे स्वरूप में सत्संग छूट जाएगा तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन चिंता है कहीं सत्संग छूट न जाए, बहुत कुछ अनर्थ न हो जाए। अरे तुम्हारे स्वरूप में कुछ अनर्थ होने वाला नहीं है, तुम्हारा शरीर इतना, तुम्हारा स्वरूप इतना कमजोर नहीं है, तुम्हारा स्वरूप बता रहा हूं, तुम्हारा स्वरूप इतना कमजोर नहीं है कि एक दिन के सत्संग छूटते ही वो खत्म अनर्थ हो जाए। अरे भाई ये तो सब अध्यास तोड़ने की बात है, तुम्हारा स्वरूप से तो कोई संबंध ही नहीं है, इतनी समझ, निश्चिंत हो जाओ, जग गए तो आ जाना, नहीं जगे तो नहीं आना, पक गया तो खा लेना, नहीं पके तो नहीं खाना। अरे नहीं पका तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे खाते हुए कोई जी रहा है क्या, जितने भी मरे हैं ना वो खाते हुए ही मरे हैं, बिना खाए कोई नहीं मर रहा है, और अब भी ऐसे करेंगे, खाते हुए ही मरेंगे, अब मरते समय कितनी भोजन रसोई में पड़ा रहेगा, रसोईया बनाता रह जाएगा और बना हुआ भोजन भी पड़ा रहेगा, और शायद कहेंगे मम्मी थोड़ा सा खा लो, पापा थोड़ा खा लो, और वह रह जाएगा वहीं सिराने में रहेगा, टेबल में रहेगा, न खाने से नहीं मर रहा है, जबकि मरता ही है खाने से, क्योंकि मैं भोक्ता हूं जो कह रहा है वही अध्यास ही मैं मरने वाला हो जाता है, क्योंकि भोक्ता ही मरता है, आत्मा तो अभोक्ता है तो क्या मरेगा भाई, आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता है तो क्या मरेगा, कर्ता भोक्ता ही तो मरता है, और उसी को हम सही मान रहे हैं। यही भ्रांति तोड़ना बहुत जरूरी है, कैसे ये सारे जगत का पदार्थ का भान होता है उसकी प्रक्रिया यह हम बता रहे हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थितम दीप प्रवाह भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा वहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् ते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दृष्टांत को समझने से पहले दृष्टांत को समझना जरूरी है, इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा दृष्टांत ही देते हैं, हर बात को समझाने के लिए कोई न कोई दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है कि जो तुमने अनुभव किया है वो दृष्टांत सिद्धांत, देखे हुए सिद्धांत को ही दृष्टांत के रूप में तुम्हें समझाया जा रहा है। दृष्ट, दृष्ट शब्द का अर्थ होता है देखा हुआ, अनुभव किया हुआ वस्तु को दृष्ट बोलते हैं, न दिखा हुआ अनुभव में न आए हुए वस्तु को अदृष्ट बोलते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष दृष्ट अदृष्ट, अनुभव में क्या आ रहा है। नाना छिद्र घटो दर स्थितम दीप प्रवाभास्वरम, हम लोग अक्सर ये उसका प्रतीक है, हम दिवाली तो हर साल मनाते हैं और दिवाली में हम घड़ा खरीद के लाते हैं दीपावली के लिए, घड़ा खरीद के लाते हैं मिट्टी का, और वो घड़ा छिद्र छिद्र वाला होगा, अनेक छिद्रों वाला होगा। और किसलिए लाते हैं, तो आजकल तो बत्ती की रक्षा करने के लिए अनेक वस्तुएं, अनेक ऐसे वस्तुओं का निर्माण हो गया है। पहले के जमाने में ये सब थे नहीं, ये सब उपाय नहीं थे। तो अखंड बत्ती बालने के लिए, जलाने के लिए लोग ऐसे छिद्रयुक्त घड़ों का प्रयोग किया करते थे। नाना छिद्र घटा, अनेक छिद्र से युक्त हुआ हुआ घड़ा, यानी दिवाली के समय में बत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए प्रयोग करने वाला घड़ा।